काली शक्तियों के मालिक अमन और मल्लिका को ये पता चला कि अमन और तारापरी गायब है। मायावी पानी में उन्हें देखकर तारापरी का खूबसूरत चेहरा और अमन के शरीर का तेज साफ साफ दिखाई दिया। वे देखते हैं कि तारापरी दुल्हन बनी हुई थी और अमन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वे दोनों अंदर ही अंदर कुड़ गए। सारे तामझाम के साथ राजसी ठाट बाट से उनकी शाही शादी पूरी हो गई। हर कोई उन्हें आशीर्वाद दे रहा था। इसके बाद करिश्मा जी रानी माँ से जाने की अनुमति मांगती हैं। उनका कहना था कि वे अपनी बहू का स्वागत बड़े धूमधाम से करना चाहती हैं, इसलिए उन्हें वहां से जाना होगा। अमन और तारा रानी माँ की सारी रस्में पूरी करने के बाद लौटेंगे। अमन ये सोचकर बेचैन था कि आज उसकी पहली वैवाहिक रात्रि है, परंतु आज रात उसकी पत्नी उससे दूर रखी गई थी। रानी माँ, जो गांव की ठकुराइन के वेश में थीं, का हुक्म था कि जब तक तारापरी और अमन उनके कुलदेवता की पूजा नहीं कर लेते, तब तक वे दोनों अपना रिश्ता आगे नहीं बढ़ा सकते। तारापरी ये सोचकर परेशान थी कि वो अमन से मोहन की कब्र पर जाने की बात कैसे करे, क्योंकि अमन से बात करना जरूरी था। तारापरी मोहन की आत्मा का धन्यवाद देने के लिए उसकी कब्र पर जाती थी, क्योंकि मोहन की वजह से ही उसे सबका प्यार मिला था और रानी माँ की छाँव में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन पूरा हुआ था। रात का तीसरा पहर चल रहा था। तारापरी अपने शादी के जोड़े में ही थी, क्योंकि जब तक कुलदेवता की पूजा नहीं हो जाती, तब तक वे दोनों अपना शादी का जोड़ा नहीं उतार सकते थे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तारापरी की आंखों में नींद नहीं थी। अमन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तारा को लगा कि सब लोग सो गए हैं, तब उसने अमन के पास जाने का फैसला किया और कमरे से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगी। अभी तारापरी कमरे से बाहर निकलने ही वाली थी कि उसे अपने कमरे की खिड़की पर कुछ आहट सुनाई दी। तारापरी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी हैरत का ठिकाना न रहा। अमन उसके कमरे की खिड़की से अंदर आने की फिराक में था। तारापरी जल्दी से अपने कमरे की खिड़की के पास गई और अमन को कमरे में आने में मदद करने लगी। तारापरी ने अमन का हाथ पकड़ा और जोर से अपनी ओर खींचा। अचानक अमन अंदर आ गया और सीधा तारापरी के ऊपर गिर गया। अमन अपना संतुलन नहीं बना पाया और वो सीधा तारापरी के ऊपर जा गिरा। तारापरी को अपने इतने करीब पाकर अमन और तारा दोनों की ही धड़कनें तेज हो गईं। तारापरी और अमन की धड़कन की आवाज़ अब एक साथ आने लगी। चूंकि रात का तीसरा पहर था, सब सोए हुए थे। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। जैसे ही तारापरी और अमन एक दूसरे के ऊपर गिरे, उनकी धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी और धड़क धड़क की आवाज़ निकल रही थी। अमन कितनी देर तक तारापरी को बेख्याली से देखता रहा। तारापरी की हालत भी कुछ अजीब सी हो रही थी। तभी अमन को ख्याल आया कि वो कहाँ गिरा हुआ है। तभी अमन तारापरी के ऊपर से उठने की कोशिश करने लगा और तारापरी भी अपने कपड़े संभालते हुए उठने लगी। लेकिन अभी तारापरी आधी ही उठी थी कि अमन का पैर तारापरी के लहंगे में उलझ गया और वो एक बार फिर उसके ऊपर गिर पड़ा। तारापरी आधी उठी थी, एक बार फिर अमन के गिरने की वजह से वो फिर से नीचे गिर पड़ी। इस बार उसका सिर जोर से बैठ के एक सिरे से जा टकराया। तब अमन ने जल्दी से तारा को उठाया और उसका सिर मलने लगा। तब तारापरी अमन का हाथ हटाकर खुद अपना सिर मलते हुए अमन से चिढ़कर बोली, आपको एक बार और मेरे ऊपर गिरना जरूरी था अमन सर। तब अमन को भी बुरा लगा और बोला, मिस तारा, मैं जानबूझकर आप पर नहीं गिरा, मेरा पैर आपके लहंगे में अटका था। आपको क्या जरूरत है रात को सोते वक्त भी इतना भारी लहंगा पहनने की। तब तारापरी अमन की बात सुनकर तप गई और बोली, अब क्या, ये आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कोई शौक है इतना भारी लहंगा पहनने का? शायद आपको माँ की कही हुई बात याद ही नहीं है। अगर नहीं है तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला देती हूँ। माँ ने साफ साफ कहा था, जब तक हम दोनों कुलदेवता की पूजा नहीं कर लेते, तब तक हमें इन्हीं शादी के कपड़ों में रहना होगा। तब अमन बोला, हाँ हाँ, मुझे याद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को अपने ऊपर गिराने के लिए आप अपने इस लहंगे को फैला कर रखें। अमन की बात सुनकर तारापरी का पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने गुस्से से अमन का गिरेबान पकड़ लिया और बोली, क्या क्या कहा आपने? आखिर आप समझते क्या है अपने आप को? आपको क्या लगता है मैंने जानबूझकर आपको गिराया है? तब अमन भी तैश में आ गया और बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा गिरेबान पकड़ने की? इस बीच वे दोनों कितने करीब आ गए थे उन्हें पता भी नहीं चला। तभी उस कमरे में किसी की जोर से हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। तारापरी और अमन चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगे, जहां सोनल परी खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। तभी मीनल परी भी हंसते हुए वहां आ गई। उन दोनों को यूं हंसता देख तारापरी और अमन उन्हें घूर कर देखने लगे। उन्हें इस तरह से हंसता देख तारापरी खुद को रोक नहीं पाई और सोनल परी पर चिल्लाते हुए बोली, तुझे क्या हुआ, तो इस तरह से क्यों हंस रही है? तुझे क्या दिखाई नहीं दे रहा मैं कितने गुस्से में हूँ? तब सोनल परी और मीनल परी उन दोनों के करीब आकर खड़ी हो गईं। सोनल परी तारापरी की ओर देखते हुए बोली, हम लोग हंसे नहीं तो क्या करें, हाँ? तब मीनल परी बोली, तुझे पता है तारा, जब अमन जीजू को हमने तेरे कमरे की खिड़की पर चढ़ते हुए तेरे कमरे में आते हुए देखा, तो हम दोनों को लगा कि जरूर अब आप दोनों का रोमांस चलेगा और हम लोग चोरी चोरी देखेंगे। लेकिन यहाँ तो रोमांस दूर दूर की बात, आप दोनों बच्चों की तरह एक छोटी सी बात पर झगड़ रहे हो। ये देखकर हमें हंसी आ गई।
नई नवेली दुल्हन और नया नया दुल्हा रोमांस करने की जगह लहंगे को लेकर झगड़ रहे हैं। इस पर हम लोग हंसे नहीं तो क्या करें। सोनल परी और मीनल परी की बात सुनकर तारा परी और अमन ने एक दूसरे को देखा और छेप गए और उन्हें याद आया कि वे दोनों वाकई बेकार की बात पर झगड़ रहे थे। तब तारा परी ने अमन का गिरेबान छोड़ा और अमन की ओर देखने लगी। वो अमन के बहुत करीब खड़ी हुई थी, तब अमन भी उसे ही देख रहा था। उन दोनों को एक दूसरे को इस तरह से देखता देख सोनल परी ने मीनल परी की ओर बाहर निकलने का इशारा किया और वे दोनों उन्हें एक दूसरे में खोया देखकर वहां से निकल गईं। अमन बोला, मिसेज अमन सिंह राठौर, आज आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। अमन के मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर तारापरी ने अपनी पलकें झुका ली और बोली, अमन सर आप भी अच्छे लग रहे हैं। तारापरी की बात सुनकर अमन मुस्कुरा दिया। तभी अचानक तारापरी को याद आया कि उसे तो अमन से मोहन की कब्र पर जाने की बात करनी थी। तब तारापरी ने अमन से कहा, अमन सर आपको याद है हम दोनों राधा मोहन के जन्म में गए थे। तब अमन बोला, हाँ मुझे याद है। तब तारापरी बोली, तो सर आप याद कीजिए, जिस जगह राधा के पिताजी ने मोहन को दफनाया था वो जगह इन्हीं जंगलों में है। तारा की बात सुनकर अमन चौंक के और बोला, हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर तो भी हमें क्या करना है। तब तारापरी अमन के थोड़ा और नजदीक गई और बोली, वो अमन सर मैं मोहन की कब्र पर जाना चाहती हूँ। क्या क्या क्या? जैसे ही अमन ने यह सुना वो शौक में हो गया और बोला, ये क्या कह रही हो तुम, अभी हमारी नई शादी हुई है और तुम कहीं अच्छी जगह घूमने के बजाय उस कब्र पर जाना चाहती हो। तब तारापरी बोली, हाँ अमन सर मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, प्लीज आप भी चलिए। कल सुबह कुल देवता की पूजा के बाद हम जंगल की ओर चलेंगे मोहन की कब्र पर। प्लीज 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 आप मना नहीं करेंगे, आप ये समझ लीजिए ये आपकी बीवी का शादी का पहला तोहफा होगा आपकी ओर से।
जैसे ही अमन ने तारापरी को खुद को अमन की बीवी बोलते हुए देखा तो वो बेहद खुश हो गया और बोला, ठीक है अगर हमारी बीवी को पहला तोहफा यही चाहिए तो अमन सिंह राठौड़ ये तोहफा जरूर देगा। जैसे ही अमन ने मोहन की कब्र पर जाने की हाँ भरी, इससे तारापरी बेहद खुश हो गई और वो खुश होते ही अमन के सीने से जा लगी। अमन तारापरी के इस एक्शन के लिए तैयार नहीं था और अचानक से जैसे ही तारापरी उससे आकर चिपकी वो बैलेंस नहीं बना पाया और वो सीधा तारापरी के बेड पर जा गिरा। अब की बार अमन नीचे और तारापरी उसके ऊपर थी। वे दोनों उस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। तारापरी की गर्म सांसें अमन के होंठों पर पड़ रही थीं और अमन तारापरी की खुशबू को अपने अंदर बसा लेना चाहता था। और अभी तारापरी के गुलाबी होंठ अमन के होंठों से मिलने ही वाले थे कि तभी तारापरी के दरवाजे पर दस्तक हुई। तारापरी और अमन एकदम से हड़बड़ाकर उठ गए। तब तारापरी बोली, आप एक काम करो पर्दे के पीछे छुप जाओ। तब अमन बोला, वॉट तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो, मैं अमन सिंह राठौड़ और पर्दे के पीछे छुपूंगा। तब तारापरी बोली, हाँ आपको छुपना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर तारापरी ने अमन का हाथ पकड़कर उसे बेड की साइड पर लगे हुए पर्दे के पीछे छुपा दिया और खुद दरवाजे की ओर देखकर बोली, हाँ आ जाइए। जैसे ही तारापरी ने ये कहा रानी माँ और करिश्मा जी उसके कमरे में आ गए। तारापरी उन दोनों को एक साथ देखकर चौंक गई और बोली, माँ इतनी रात हो गई है आप दोनों अभी तक सोई नहीं।